वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 चैप्टर 5 टेक्स्ट क्रमांक 18। एकवल्य संप्रांता ये चाति चातिता च मूढदशा मूढताम् त्रैवेरिकिका दक्षनिका आत्मान घातयन्ति ते। ये कैवल्य संप्राप्ता ये चातिता च मूढदशा मूढ़ता त्रैवेरिकिका यक्षनिका आत्मान घातयन्ति ते। ये कैवल्यं संप्राप्ताये ये चातिता च मूढ़ता त्रैवेरिकिका यक्षनिका आत्मान घातयन्ति ते। ये कैवल्य संप्राप्ताये चातिता च मूढ़ता त्रैवेरिकिका क्षणिका आत्मान घातयन्ति ते। ये कैवल्य संप्राप्ता मूढ़ता आत्मन घातयन्ति ते। ये कैवल्य संप्राप्ता ये चातिता च मूढ़ता क्षणिका आत्मान घातयन्ति ते। माताजी ये कैवल्य संप्राप्ता वर्गिकाय क्षणिका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ये दोज हु कैवल्यम नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ आसम प्राप्तम हैव नो नॉट अचीव्ड। ये हु च अल्सो अतीत हैव ट्रांसजेंडेड च अल्सो मूढ़ता ग्रॉस फूलिशनेस Trayvargika. Dedicated to three goals of pious life, namely dharma, religiosity, artha, economic development, and calm, sense gratification. He indeed akshunikaha, not having even a moment of reflect. Atmanam, their own selves. Ghatayanti, murder. Te, they. Translation and purport by disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Translation. Those who have not achieved knowledge of the absolute truth, yet who are still beyond the darkness of complete ignorance, generally follow the threefold path of pious material life, namely religiosity, economic development, and sense gratification. Not having time of reflect on any higher purpose, they become the killer of their own soul. Purport. Those who are completely in the darkness of ignorance and thus bereft of even of material pious life, commit innumerable sinful activities and suffer greatly. Due to such intense suffering, such persons sometimes seek the shelter of the devotees of the Lord, and being blessed by such transcendental association, are sometimes elevated to the highest perfection stage of Krishna consciousness. Those who are not completely sinful experience some mitigation of the miseries of material life, and thus develop a false sense of well-being within the material world. Because those who are materially pious generally obtain worldly prosperity, bodily beauty, and a pleasant family situation, they become falsely proud of their position and are not inclined to associate with a accept instruction from the devotees of the Lord. Unfortunately, all material activities, whether pious or impious, are inevitably contaminated by simple activities. Those who are proud of their piety and do not like to hear about Krishna, sooner or later fall down from their sinful position. Every living entity is an eternal servant of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Therefore, until we surrender to Krishna, our position is actually always impious. The word akshanika, not having even a moment of reflect, is significant in this verse. Materialistic person cannot spare a single moment of their eternal self-interest. This is a symptom of misfortune. Such persons are considered to be killing their own soul because by their obstinacy they are preparing a dark future for themselves from which they will not escape for a very long time. A sick man receiving medical treatment may be encouraged by the preliminary result of the doctor's care. But if the patient becomes falsely proud of their preliminary progress in their treatment and prematurely gives up their doctor's orders, thinking himself already cured, there will be undoubtedly be a relapse. The words as kaivalyam asamramtam in this verse clearly indicate that material piety is a long way from perfect knowledge of the absolute truth. If one gives up his spiritual progress before achieving the lotus feet of Krishna, he will undoubtedly fall back down in that most unpleasant material situation. Even if he has achieved impersonal realization of the Brahman effulgence, as stated in Srimad Bhagavatam, Aroya Karchenam Param Padam Tata Patanti Adha. ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरु मिलितमेना तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदैतं सावदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सगणललिता श्रीविशाखावितांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं वरिष्ठ भक्तों से आशीर्वाद चाहता हूं। मैं कुछ बोलने का प्रयास करूं। आज का प्रवचन हिंदी में होगा और सही में मेरा यहां पर बैठने का कोई पात्र नहीं हूं, लेकिन केवल भक्तों की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं बैठा हूं। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं और मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ भगवान का गुणगान करने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर जो इस श्लोक का तात्पर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे साक्षात्कार की के अनुसार मैं उसको चर्चा करने का प्रयास करूंगा। कृष्णदास केवराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के जो लेखक है, जो चैतन्य महाप्रभु की जीवन चरित्र उन्होंने लिखा है, वो लिखते हैं कि कृष्ण सम सूर्य माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिकार। कि यहां पर इसकी तुलना की गई है कि अंधकार यानी अज्ञान की तुलना की गई है। जब भी अंधकार हो जाता है तो जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है तो वो ज्ञान के बारे में या भगवान के बारे में उसको समझना बहुत कठिन है। लेकिन इसीलिए यहां पर कहता है कि अज्ञान जो है भौतिकवादी व्यक्ति की तुलना की गई है, जो अज्ञान में रहते हैं और अंधकार में रहते हैं, और वहां पर रहकर भी वो क्या करते हैं, अपने जो भी भौतिक जो कार्य रहते हैं, धार्मिक कार्य है, वो भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि वो अज्ञान में है और अंधकार में है। इसी तरह से अपना भौतिक धार्मिक कार्य भी अच्छी तरह से नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनको जीवन में दुख भोगना पड़ता है। जैसे तीन क्लेश आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेशों में से गुजरना पड़ता है। और बहुत बार ऐसे लोग रहते हैं कि जब भी जीवन में समस्या आती है पीड़ित रहते हैं, और ऐसी जब भी जीवन में समस्या आती है तो फिर भक्तों का सहारा लेते हैं कि समस्या से बाहर आने के लिए। जैसे कि भगवद्गीता के सातवें अध्याय में श्लोक आता है कि चतुर्विधा भजते इमाम ये जना सुकृत अर्जुन आर्ता अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतवर्षभा। इसी तरह से भगवान बोलते हैं कि चार प्रकार के लोग जो है मेरी भक्ति में आते हैं, आर्ता अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें से ज्ञानी जो व्यक्ति है वो सबसे ऊंचा स्तर है उसका। इसी तरह से अंधकार से सब भगवद्गीता शास्त्र यही कहता है कि कैसे हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ आना है, हमको तमसो मा ज्योतिर्गम। इसी तरह से जब भी हम भगवान के भक्तों के संग में आएंगे, गीता भागवत पढ़ेंगे, उसके श्रवण करेंगे, तो हम प्रकाश के तरफ आ सकते हैं और तभी हमारे हृदय के अंदर जो भी अंधकार है हम दूर हो सकता है। इसी तरह से जो जीव का स्वभाव जो है बहुत महत्वपूर्ण इसका यह है तात्पर्य इसमें कि जीव का स्वभाव क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्यता, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरित में बताते हैं कि जो जीव जो है उसका स्वभाव है कृष्ण रे नित्यदास। हर जीव का स्वभाव है कि वो भगवान का सेवक है, जिसे मनुष्य प्राणी नहीं लेकिन बाकी जो भी प्राणी है उनका भी स्वभाव है कि वो भगवान की सेवा करना और अपने अपने प्रयासों से अपने अपने पात्रता के अनुसार वो भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से सेवा करना जो है हमारा स्वाभाविक गुणधर्म है। जैसे काफी बार उदाहरण दिया जाता है कि जो शक्कर का गुणधर्म है मिठास, चीनी का गुणधर्म है तीखा और नमक का गुणधर्म है खटा, इसी तरह से उसका गुणधर्म है। उसी तरह से जीव का गुणधर्म है, स्वभाव है कि भगवान की सेवा करना। लेकिन जीव क्या बोलता है कि मैं भगवान की सेवा क्यों करूं, मुझे तो देश की, राष्ट्र की, समाज की, परिवार की ऐसी सेवा करना है। बहुत बार लोग तो जैसे जीवन में परिवार नहीं रहता है, कोई मित्र नहीं रहता है, ये नहीं रहते, तो फिर कुत्ते बिल्ली सुअर ऐसे गाय गधा ऐसे प्राणी की सेवा करते रहते हैं। लेकिन इससे हमको समझ में आता है कि हमारा सेवा जो करने का स्वभाव है हम उसको त्याग नहीं सकते, सेवा हमको किसी का तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हमको सोचना पड़ेगा कि सेवा हमको किसी करनी है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति क्यों करेंगे, प्राणी को करेंगे, तो वो प्राणी को जैसी गति होगी उसको हमारी गति हो जाएगी। लेकिन भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्तों की हम सेवा करेंगे तो हमको भगवान के धाम हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्लोक आता है कि भक्ति की व्याख्या के बारे में आता है, भक्ति क्या है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुचित। यहां पर भक्ति की व्याख्या बता रहे हैं कि भक्ति यानी क्या है। तो जो भी हमारे उपाधि है, मैं इस मुंबई शहर का हूं, इस घर का मालिक हूं, मेरा नाम यह है, मेरी डिग्री ये है, मैं दिखने में इतना सुंदर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये सब क्या है, भौतिक उपाधि है। तो भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं तो ये सब उपाधि को हमको बाजू में रखना पड़ेगा। ये सब आप उपाधि हम लेकर आते हैं तो हमारे भक्ति के लिए एक बाधा हो जाता है, इसमें भगवान के और हमारे बीच में एक वो बाधा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये सब जो उपाधि है हमने खुद स्वयं बना के रखा है, हमने हमको किसी ने दिया नहीं है उपाधि, लेकिन हमने स्वयं ये बनाया है उपाधि कि मैं ये हूं, मैं हूं इसी तरह से, तो ये सब हमने उपाधि बनाया है। तो ये उपाधि से हमको बाहर आएंगे और बाहर आने के क्या करेंगे, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्व निर्मलम ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुचिते। तो सर्व उपाधि को त्याग कर हमको क्या करना चाहिए, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी जो है भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम एक नाम है ऋषिकेश और उनको कहा जाता है कि वो इंद्रियों के स्वामी भी है। ऋषिकेश यानी ऋषि यानी इंद्रिय, केश यानी स्वामी, ऋषिकेश यानी जो इंद्रियों के स्वामी है। तो इंद्रियों के स्वामी की हमको सेवा करना पड़ेगा। हम जो है ऋषिकेश हम जो है इंद्रियों के सेवक हैं और भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। जब इस भौतिक इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं, जैसे हमारे सभी इंद्रिय जो है जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसको भक्ति कहा जाता है। जैसे कि आंख है भगवान का दर्शन के लिए हम लगा सकते हैं, कान भगवान की कथा सुनने के लिए है, जीवा भगवान का गुणगान करने के लिए, इसी तरह से हमारे जो भी इंद्रिय है भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं, तभी उसको भक्ति कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत ऐसा कहा जाता है कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं जो आत्मा का स्वभाव है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, एक आत्मघात कर रहे हैं, स्वयं को आत्मा की हत्या कर रहे हैं। जैसे सुदाम प्रभु बताते हैं कि आत्मा का खत्मा कर रहे हैं हम। आत्मा का स्वभाव है कि भगवान की सेवा करना, सरल तरीका है भगवान की सेवा करो। लेकिन अगर हम भगवान की नहीं सेवा कर रहे, जैसे मनुष्य जन्म भी बहुत दुर्लभ मिला है, तो 84 चक्रव्यूह के बाद हमको ये मनुष्य जन्म मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, तो उसका योग्य उपयोग हमको करना चाहिए। अगर हम उसका योग्य उपयोग नहीं करते हैं और दूसरे चीजों के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि खाने के लिए, पीने के लिए, मौज मजा करने के लिए, अनेक बाकी चीजों का सुनने के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं, हम आत्मा का हत्या कर रहे हैं, इसमें आत्महत्या कर रहे हैं, स्वयं की आत्मा की हत्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे एक वैष्णव आचार्य बहुत सुंदर भजन गाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भाजया, जानिया शुनिया विषय खाइनु। तो यहां पर बताते हैं कि हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, कि मुझे जो इतना बहुत मूल्यवान ये मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है, लेकिन मैंने क्या किया इस मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भाजिया जानिया शून्या विषय खाइनु। तो मैंने इस जन्म में जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ था, भगवान राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए, उनका नाम लेने के लिए, तो मैंने जीवन भर उनका नाम लिया ही नहीं, तो मैंने क्या किया, फिर एक विष में प्राशन किया मैंने, और विष प्राशन करने के बाद आदमी क्या होता है, उसका मृत्यु हो जाता है। इसलिए ये उनकी नम्रता है, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत बड़े महान आचार्य है, लेकिन उनके उदाहरण से, ये गीत से वो हमको सिखाना चाहता है कि हमको किस तरह से इस मनुष्य जीवन का जो है उपयोग हमको करना चाहिए, और तभी हम हमारा जो मनुष्य जीवन जो है हम सार्थक कर सकते हैं। तो वही मुद्दे पर हम आते हैं कि किस तरह से जीव जो है भगवान का सेवक है और भगवान की सेवा नहीं करता है तो जीवन में दुख भोगता है। उसका दुख का एक ही कारण है, जैसे आप किसी को पूछा है कि आप कैसे हो, तो आप लोग बोलते हैं कि हम अच्छे हैं, भारी दृष्टि से तो हमको लगता है कि हम अच्छे हैं, लेकिन हृदय जो आत्मा जो है अतृप्त है, उनका आत्मसंतुष्टि नहीं है। लोग जो है अनेक अनेक तरह से ये प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अनेक अनेक चीजें देखने का इच्छा करते हैं, पहनने का इच्छा करते हैं, सुनने का इच्छा करते हैं, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है। यानी सब जो जीवात्मा जो है अतृप्त है जीवन में, कभी संतुष्ट नहीं है। तो इसीलिए ये सब लोग क्या है, दुखी है। तो ये दुखों का कारण यही है लोगों का, कि लोग बोलते कि मैं क्या हूं, मैं ईश्वर महाभोगीम सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं भोग लेने वाला व्यक्ति हूं, मैं आनंद लेने वाला चाहता हूं, और मैं शक्तिमान हूं, मैं सुखी हूं, ऐसा कहते तो है, लेकिन सही में वो सुखी नहीं है। तो यही उनके सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम बोलेंगे कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, अगर ये हम जीवन में समझ जाते हैं तो हम जीवन में सुखी हो जाते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि मैं भगवान हूं, मैं भोगी हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं सबसे सुखी व्यक्ति हूं, तो वो जीवन में व्यक्ति दुख भोगता है। इसी तरह से भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में बताते कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सूरद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। तो भगवान यहां पर शांति का सूत्र बता रहे हैं। यहां पर अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भोक्ता हूं, तो फिर भगवान के समान तो नहीं है, वो साधारण जीव है, वो कैसे भोक्ता हो सकता है, वो तो भगवान का सेवक है। लेकिन स्वयं यहां पर समझ रहा है कि मैं भोक्ता हूं यहां पर वो व्यक्ति, इसीलिए जीवन में वो दुख भोगता है, क्योंकि वो जीव का स्वभाव नहीं है भोग प्राप्त करना, केवल भगवान कृष्ण ही अकेले भोगता है, आनंद लेने वाले है, और बाकी सब जीव जीव है उनके सेवक है, उनकी सेवा करना उनका कर्तव्य है। इसी तरह से और एक इसका ज्वलंत उदाहरण है, किस तरह से लोग बोलते हैं कि मैं भोगी हूं, मैं आनंद लेने वाला हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसे कलयुग में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो एक उदाहरण है भागवत के 7वें स्कंद में आता है, हिरण्यकश्यप का उदाहरण आता है, उसका वो ज्वलंत उदाहरण है। हिरण्यकश्यप, उसके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य था, धन था, उसका पास शक्ति थी, उसके पास सोना था, चांदी, हीरा, सब कुछ ऐश्वर्य उनके पास था, ये सब कुछ ऐश्वर्य होने के बाद भी उसको भोग करने की प्रवृत्ति थी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो जीवन में संतुष्ट नहीं था, उसको और कुछ प्राप्त करने का इच्छा था, हिरण्य और कश्यपु, तो और कुछ उसको प्राप्त करने का इच्छा था। तो ये असुरी लोगों का सब कार्यकलाप रहता है, ऐसा उनको जीवन में जो कुछ मिलता है तो उसमें वो संतुष्ट नहीं रहते हैं, उनको क्या लगता है कि हमको और कुछ प्राप्त करना है, और कुछ प्राप्त करना है मुझे, मैं और कुछ प्राप्त करूंगा तो मैं और सुखी हो जाऊंगा, और कुछ प्राप्त करूंगा तो मुझे और भी सुख प्राप्त होगा। इसी तरह से ये हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली था, तो इतना शक्तिशाली था, सब कुछ उनके पास था, लेकिन संतुष्ट नहीं था, संतुष्टि का असंतुष्ट था। तो असंतुष्टि का कारण क्या था? तो एक तो भगवान का द्वेष करता था, भगवान का द्वेष शत्रुभाव करता था, क्योंकि भगवान को मारने का प्रयास करता था वो, और दूसरा उनके जो प्रहलाद महाराज थे पुत्र भक्त, तो उनका भी वो द्वेष करता था, उनको मारने का प्रयास करता था। तो जो व्यक्ति भगवान की निंदा करता है, भगवान के भक्तों को तकलीफ देता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कैसे शांति प्राप्त कर सकता है? शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसीलिए उसका अनेक कार्यकलाप थे हिरण्यकश्यपु के, सभी देवी देवता जो थे तो उसके डर से अपना अपना कार्य करते थे, भागते थे, अपना जो खुर्ची खाली करते हुए वो इधर उधर भागते थे। उतना हिरण्यकश्यपु का जो वर्चस्व था, उतना उसकी शक्ति थी, उनके सिर्फ आंखों के इशारों से सब देवी देवता कार्य करते थे, लेकिन यहां पर उनके घर पे उनका छोटा सा बालक, 5 साल का बालक उनको डरता नहीं है। तो ये कैसे असंभव है? क्योंकि इस बालक ने क्या किया था? भगवान की शरणागति ग्रहण की थी। प्रहलाद महाराज ने भगवान कृष्ण की शरण ली थी। उनके जीवन में जब भी कोई समस्या आती थी तो प्रहलाद महाराज क्या करते थे? भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भी जैसे वृंदावन में भी जब भगवान कृष्ण थे, वृंदावन में लीला कर रहे थे, तो असुर, अनेक असुर आते थे, कौन से भेजता था उनको भगवान को मारने के लिए, और जो असुर भगवान के ऊपर आक्रमण करते थे, कभी कभी ब्रजवासी के ऊपर भी आक्रमण करते थे, तो ब्रजवासी क्या करते थे? कृष्ण को पुकारते थे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ताना भयंकर, आप आइए हमको बचाइए। तो ब्रजवासी का ये भाव रहता था, जीवन में जब भी कोई समस्या आती थी, संकट आता था, तो भगवान को पुकारते थे, भगवान का आश्रय लेते थे। तो उसी तरह से ये भक्त का स्वभाव रहता है, जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो बाहर जो भौतिकवादी जो उपाधि है या कुछ सुविधा है उसका आश्रय लेते नहीं है ज्यादा, लेकिन भगवान का आश्रय लेते हैं। और सही हृदय से अगर हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान जो है हमारी आकर रक्षा करते हैं। जैसे भागवत में अनेक वर्णन है, गजेंद्र है, द्रौपदी है, अनेक का भगवान ने रक्षण किया, उन्होंने हृदय से भगवान को पुकारा। इसी तरह से भगवान के ऊपर हमको आश्रित रहना है, तभी भगवान हमारे जो है रक्षा करेंगे। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो जिसका अगर कृष्ण रक्षण करना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता है, और जिसका कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसको कोई रक्षण नहीं कर सकते। तो इसीलिए हिरण्यकश्यपु के जीवन में भी देखते हैं कि इतना उनके पास शक्ति थी, सब कुछ था, और ब्रह्मा जी का वरदान भी था उनको, ये सब कुछ होने के बाद भी नरसिंह भगवान आकर उनका उद्धार किया उन्होंने, हिरण्यकश्यपु का। तो इसीलिए ये कलयुग की स्थिति है, कलयुग में भी छोटे मोटे हिरण्यकश्यपु के वंशज है अभी भी, वो भी बोलते हैं कि हम भी भगवान हैं, हमारे पास भी ऐश्वर्य है, शक्ति है, सब कुछ है। लेकिन हिरण्यकश्यपु के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमारे पास कितना भी ऐश्वर्य हो, शक्ति हो, संपत्ति हो, लेकिन हमारे साथ ये सब कुछ आएगा नहीं, हमारे साथ केवल भगवान की भक्ति आएगी। तो इसीलिए एक महाराष्ट्र के, और इसीलिए जो लोग जो है हमेशा भौतिक जो चीजों को प्राप्त करके जो है हमेशा हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। तो संत तुकाराम महाराज एक छोटे से आभंग में बोलते हैं कि कृष्णदास जो है हमेशा बिंदास रहते हैं और मायादास हमेशा उदास रहते हैं। और इसीलिए कलयुग के जो लोग भी हैं बोलते हैं कि जब भी माया उनके सामने आती है, माया यानी भौतिक जो भगवान की शक्ति है, भ्रमित करने वाली शक्ति है, तो उसको क्या करते हैं भौतिकवादी व्यक्ति, माया को हाँ करते हैं कि हम ठीक है आपकी सेवा करेंगे, लेकिन कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण के आदेशों का पालन करना, जब भी उनको कहा जाता है कृष्ण के ग्रंथ पढ़ना, तो लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, नो टाइम, यस टू माया नो टू कृष्णा। इसी तरह से कलयुग की ये परिस्थिति है और आगे भी जाकर जो है कलयुग जो है और भी प्रगति करेगा कि धीरे धीरे जो लोग जो है माया की सेवा करने को ज्यादा पसंद करेंगे। इसी तरह से भगवान के भक्तों को जो है डर नहीं रहता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं और भगवान जो है भगवान का चिंतन करते रहते हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो और भी इस एक श्लोक में तात्पर्य में आता है कि बीमार व्यक्ति कौन है, बीमार व्यक्ति का लक्षण बताया गया है यहां पर। तो बीमार व्यक्ति का पहले तो बीमारी समझना, अगर भौतिक दृष्टि से हम तंदुरुस्त है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम बीमार हैं, तो सबसे बड़ी बीमारी है कि हम भगवान को भूल चुके हैं। भगवान को भूलना एक सबसे बड़ी बीमारी है, दुखों का भी कारण है। तो बीमार व्यक्ति, इसीलिए हम दुख को भोग रहे हैं, बीमार है। तो बीमार व्यक्ति का, अगर व्यक्ति बीमार रहता है, एक भौतिक उदाहरण दिया जाता है यहां पर, बताया रहे कि व्यक्ति जब भी बीमार रहता है तो डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको दवाई देता है। दवाई देने के बाद डॉक्टर बोलता है कि आप ये दवा लीजिए, आपको ये बीमारी हो गई है, आप दवा लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति को इतना अहंकार रहता है कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना पैसे वाला हूं, सब कुछ मेरे पास है, तो मैं जीवन में दवा क्यों लूं, मैं दवा नहीं लेना चाहता। तो क्या होगा, अगर दवा नहीं लेगा तो अहंकार से कहेगा कि मैं दवा नहीं लूंगा तो उसकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी, उसको वापिस ज्यादा बीमारी उसको बढ़ती जाएगी और उसको ज्यादा फिर जीवन में दुख सहन करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम लोगों को बोलते हैं कि आप भगवान की भक्ति करो, आप बीमार हो, आपको भवरोग हो गया है, भगवान का चिंतन करो, तो लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो ठीक हूं, मेरे पास सब कुछ पैसा है, सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है, व्यवसाय ठीक चल रहा है, मेरा परिवार ठीक है, सब कुछ है, मुझे भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। तो ये बीमार व्यक्ति की उपमा यहां पर दी गई है, ये सब व्यक्ति बीमार है, लेकिन अगर सही जो औषधि है भगवान का हरिनाम, भगवान का जप, भगवान की कथा अगर हम नहीं लेते हैं तो हम यही बीमारी अवस्था में रहेंगे और हमारी इस बीमार जो है कलयुग में बढ़ती जाएगी। और इस बीमारी जो है बढ़ाने के लिए अनेक सारी सुविधा कलयुग में उपलब्ध है, आपको बीमारी को बढ़ावा देगी, लेकिन भगवान की भक्ति में जब आते हैं तो बाकी जो जो आपको भौतिक बीमारी है उससे हम दूर हो सकते हैं और भगवान का नाम लेकर, हम भगवान की शरण लेकर जीवन में सही प्राप्ति, जीवन की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना चाहिए और श्री कृष्ण की शरण लेना कलयुग में एकमात्र उपाय है भगवान के नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी जो बीमारी है ठीक हो जाएगी। कृष्ण रसायन, ये कृष्ण रसायन कहा गया है, भव औषधि है, कि बताया गया है श्रीमद् भागवत में, भगवद गीता में, कि हमारी समस्या क्या है, समस्या के ऊपर उपाय क्या है और दवा भी क्या है, तीनों बताया गया। समस्या है भगवान को भूल चुके हैं, हमको भवरोग हो गया है, और उसके ऊपर एक ही उपाय है, भगवान का भक्ति, भगवान का नाम जप, भगवान का गुणगान। अगर हम ये जीवन में लेते हैं तो हम जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं और इस भवरोग से बाहर आ सकते हैं। और प्रश्न निर्माण होता है कि फिर अगर हम भगवान का नाम जप करना है, ये सब कार्य करना है तो कैसे करें। तो इसीलिए भक्तों का मार्गदर्शन, भक्तों का संग भी बहुत आवश्यक है। भक्तों के संग के बिना हम ये सब कार्य नहीं कर सकते, भक्ति के कार्य। जैसे यहां पर भी कुछ भक्त है, हम भी हमारे जीवन में देख सकते हैं कि हम पहले भी आपके भौतिकवादी व्यक्ति थे, सब बाहर के जो लोग करते हैं वैसे ही कार्य कर रहे थे, लेकिन भक्तों का संग हमको प्राप्त हो गया और संघ के प्रभाव से हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। तो श्रीमद् भागवत में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि भक्तों का संग हो गया व्यक्ति को और उनका जीवन जो है परिवर्तन हो गया। तो इसी तरह से भक्तों के संग करना जीवन में बहुत आवश्यक है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध में बताया है, शुश्रूषो सर्वदानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान मत सेवा विप्र पुण्य तीर्थ निशिवयात। तो इसीलिए अगर भगवान की सेवा करने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों की सेवा करना पड़ेगा, तो भगवान की हम प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान के भक्तों की सेवा कैसे करना, तो जो भी भक्त भौतिक कामना से मुक्त है उनके द्वारा जो है, जैसे शुद्ध भक्त है, जैसे प्रभुपाद जो है उनके शिष्य है, उनके द्वारा हमको श्रवण करना पड़ेगा। तो उनके द्वारा अगर श्रवण करने से क्या होगा, हमारे हृदय के अनर्थ जो है दूर हो जाएंगे और उनकी आज्ञा का पालन हमको करना पड़ेगा। अगर वो जो बोलते हैं हमको, तो हमको जीवन में आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उनके जो बोलते हैं वो हमको करना पड़ेगा। वो बोलते कि आप ये मत करो तो वो नहीं करने का, वो बोलते कि आप ये करो तो वो करना पड़ेगा। इसी तरह से शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करके उनकी आज्ञा का पालन करने के बाद हम जो श्रवण भगवान का नाम रुचि है हमको प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बताते हैं, भगवान ही बताते हैं, अगर आप मेरी भक्ति करना चाहते हैं या मेरी पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करो, मेरे भक्तों की पूजा करो, मेरे भक्तों की सेवा करो। प्रभुपाद जी बोलते कि अगर आप मुझे प्रेम करना चाहते हो तो मेरे कुत्ते से प्रेम करो, लव मी लव माय डॉग। तो भगवान की भक्त कुत्ता नहीं है लेकिन उसकी उपमा दी गई है। लेकिन अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके भक्तों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है, और भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना है तो उनकी क्या करना है, उनकी सेवा करना है। अगर सेवा करने से तो हम भगवान के भक्त और भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो श्रवण की महिमा का भी वर्णन बताया गया कि श्रवण करने से हमको क्या लाभ होगा जीवन में। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, नष्ट प्रायेशो भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो भगवान नष्ट प्रायेशु भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया, तो हर रोज श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं तो उससे हमको क्या लाभ होगा। तो हमारे हृदय के अंदर जो भी अनर्थ बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब अनर्थ क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उनके हमारे हृदय के अंदर जो अनर्थ है नष्ट हो जाएगी केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से और भगवान का नाम जप करने से। तो ये श्रवण की महिमा है, हम श्रवण करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और हमारे अनर्थ जो है नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से हमको श्रीमद् भागवत ग्रंथ और श्रीमद् भगवद गीता का हमेशा श्रवण करना चाहिए, तभी हमारे जो भक्ति में जो है उन्नति हो जाएगी। और यही भक्ति जो है, भक्ति बहुत बार लोग बोलते हैं कि भक्ति यानी निष्क्रिय अवस्था है, भक्ति करना यानी कुछ कार्य नहीं करना है, बस आंखें बंद करो सामने बैठो, यही भक्ति नहीं, ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति यानी सक्रिय है, कुछ तो कार्य करना पड़ेगा हमको भक्ति में, भगवान की सेवा करना पड़ेगा, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा और भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। भक्ति यानी निष्क्रिय नहीं है, तो भक्ति जो है सक्रिय है, हमेशा 24 घंटा जो है भगवान की हमको सेवा करना पड़ेगा। हम जो भी कार्य करते हैं जीवन में तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति को लगता है कि भगवान की भक्ति यानी क्या है, कुछ काम धंधा मत करो, सिर्फ भगवान के सामने जाके बैठो आंखें बंद करो, ये भक्ति है। तो ये भक्ति नहीं है। जब भी हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो यहां पर देखते हैं कि सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक जो है भक्ति की यहां पर आने का अनेक विधियां है, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो नवविधा भक्ति का मार्ग है ये सब भक्त लोग करते रहते हैं और हमेशा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, तो ये भक्ति की विधि है। इसी तरह से लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति के विषय में अलग उसके विपरीत रहता है। भौतिकवादी व्यक्ति क्या क्या करते हैं, जैसे कि विशेष करके उनको कहा जाता है कि ग्रहमदी जीवन के बारे में उनको उपमा दिया गया है, जो व्यक्ति के व्यक्ति के जीवन में भगवान केंद्र में नहीं है तो व्यक्ति भौतिकवादी यानी ग्रह मेदी की तुलना की गई है। मेदी यानी मत्सर उसका वर्णन है, तो मेदी यानी मत्सर वो व्यक्ति क्या करता है, हमेशा मत्सर करते रहता है, दूसरा पड़ोस का मत्सर करेगा, जो आमने जो बराबर का व्यक्ति है उसका मत्सर करेगा, देश का मत्सर राष्ट्र का मत्सर सभी का जो है उसके हृदय में मत्सर ही बैठा रहता है, उसको मेदी कहा गया है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति हर चीज का जो है मत्सर करेगा, क्योंकि उसका कार्य क्या है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, इसी तरह से सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं, मेरे से बढ़कर और कोई व्यक्ति नहीं है, तो ये मत्सर का लक्षण है। इसी तरह से ऐसे व्यक्ति जो है सामाजिक राजकीय नैतिक जो समाचार पत्र है पेपर्स है न्यूज है ऐसे व्यक्ति ऐसे सुनने में ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये व्यक्ति का लक्षण है, ग्रह मेदी का लक्षण है, भौतिकवादी व्यक्ति का लक्षण है कि भगवान की कथा छोड़कर भौतिक जो चीज है उसको सुनने में वो ज्यादा आनंद लेता है। इसी तरह से फिर ऐसे जो सभी कार्य जो है भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, श्रवण में रुचि नहीं है, अनेक अनर्थ हमारे हृदय में है, तो ये सब अनर्थों से कैसे हम बाहर आए। इसी तरह से और भी भागवत में श्लोक आते हैं, दूसरे स्कंद में दूसरा अध्याय 36वां श्लोक यहां पर बताते हैं कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रुतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य च यथा भयम्। तो यहां पर बताया गया है कि हमेशा भगवान कृष्ण का के बारे में श्रवण करना है, उनकी कीर्ति का गुणगान करना है, और भगवान कृष्ण के बारे में हमेशा जो हमने सुना है उसको क्या करना है, स्मरण करना है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दाशर्य, ये जो हम अगर विधि जीवन में करते हैं तो हम जीवन में जो है सुप्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अंत में और एक साधु संघ के बारे में कथा बताऊंगा कि श्रवण की महिमा तो हमने बताया कि श्रवण करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा, इसीलिए हमको भक्तों के भक्तों के साथ में रहना पड़ेगा, भक्तों का भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत में आने कई उदाहरण हैं कि जो व्यक्ति असुर थे भौतिकवादी व्यक्ति थे सब कुछ पाप कार्य करते थे, तो ऐसे लोगों ने कैसे शरण ली, साधुओं की संग किया, उन्होंने कैसे कुछ स्वेच्छा से संग किया इच्छा से, और किसी को जबरदस्ती संग हो गया, इच्छा नहीं थी फिर भी उन्होंने जबरदस्ती साधु के मुख से उन्होंने सुना, तो उनका कैसे उद्धार हुआ फलश्रुति, तो ये हम देखेंगे। तो साधु संघ का महत्व वर्णन आता है शास्त्र में, साधु संघ सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हुए। तो ये जो श्लोक जो था नारद मुनि ने सुना, तो नारद मुनि भगवान के एक शक्तावेश अवतार है, भगवान ने विशेष उनको शक्ति प्रदान किए हैं उनकी भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो नारद मुनि को ऐसा संशय आ गया कि एक ऐसे संभव है कि लव मात्र साधु संघ एक छोटा सा क्षण, जैसे हम आंखों की जो पलकियां छपकाते हैं तो उससे भी एक लव मात्र कहा जाता है कि बहुत कम समय में अगर किसी साधु का आप संग प्राप्त कर सकते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है, उसमें पूर्ण सिद्धि होए, जीवन की पूर्णता उसमें है, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि होए। तो नारद मुनि बोले कि ये कैसे संभव है, तो ये कथा जो है श्रीमान सुदामा पर उसे मैं सुना था, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। तो नारद मुनि पूछते हैं कि भगवान ये कैसे संभव है, तो भगवान बोलते हैं कि तुम अभी इसी व्यक्ति के पास जाओ और देखो इसको अनुभूति कर लो। तो नारद मुनि एक बार एक तोते के पास जाते हैं। तोता रहता है ना पिंजरे में बंद करते लोग पालते रहते हैं, तो तोते के पास जाते हैं और जैसे ही वो साधु संघ का ये श्लोक जो है, साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु सर्वसिद्ध है, ये श्लोक बोलने वाले रहते हैं, तो तोता जो है अपनी गर्दन नीचे डाल देता है और वो मृत हो जाता है। वो चकित हो जाते हैं नारद मुनि, कैसे हैं, मैंने तो इसको पूछने के लिए आया था कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, तो सुन के ही वो शरीर उन्होंने त्याग दिया। दूसरी बार एक गाय का बछड़ा जन्म होता है तो वहां पर जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो वो बछड़े के सामने जाकर वो ये श्लोक बोलने वाले रहते हैं, शुरू करते हैं तो बछड़ा भी शरीर त्याग देता है। दो बार हो गया, और तीसरी बार कहा था कि आप क्या करो, एक नवजात बालक के पास आप जाइए और उसको पूछिए कि वो इसका अर्थ आपको बता देगा। तो नारद मुनि तो डर गए कि एक बार तो ये तोता मर गया, दूसरा बार ये बछड़ा मर गया, तो मैं बच गया, उसमें मुझे कुछ ज्यादा हानि, लेकिन अगर मैं जाऊंगा अरे बालक के सामने ये श्लोक बोलूंगा और बालक का अगर मृत्यु हो जाएगा तो उसके माता पिता तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। उसको डरने लगा उनको नारद मुनि को। फिर भी उन्होंने भगवान के शब्द पर विश्वास रखा और वहां पर गए वो, और जैसे ही गए तो ये श्लोक बोलने लगे, साधु संघ सर्व शास्त्र के लव मात्र साधु संघ श्री सिद्धि हुए। तो तभी बालक ने ये श्लोक सुना और उन्होंने कहा नारद मुनि से कि हे नारद मुनि, आप पहले बार तोते के पास गए थे तो उन्होंने शरीर त्याग दिया, दूसरी बार बछड़े के पास गए थे उन्होंने भी शरीर त्याग दिया, तो वो तोता और बछड़ा मई था, वैसे ही आपने ये श्लोक सुनाया तो श्लोक सुनकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन इस जीवन में मुझे क्या हो गया, मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, और मनुष्य जीवन में मैंने क्या किया, ये श्लोक सुना और मैं क्या किया, भगवान के धाम में अभी जा रहा हूं, केवल एक साधु का संग लव मात्र साधु संग प्राप्त हो गया मुझे और मैं अभी भगवान के धाम जा रहा हूं। ये साधु संघ की महती है, महत्व है, किस तरह से एक साधु का आप प्रत्यक्ष रूप में संग करते हैं। तो लेकिन दूसरा एक इसके विपरीत उदाहरण है, जो अमरीश महाराज के भाई थे, उनका नाम था पापीराज। तो अमरीश महाराज तो भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने पूरी भगवान की सेवा के लिए अपने सभी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा दिया उन्होंने। लेकिन भक्त की जब भी इच्छा रहती है कि मैं भक्त हूं, लेकिन मेरे परिवार वाले, मेरा भाई, मेरे जो सगे संबंध है, वो भी भक्त बनना चाहिए, उनके हृदय में करुणा रहती है। तो अमरीश महाराज के हृदय के अंदर ये करुणा थी, तो उन्होंने नारद मुनि को कहा, तो आप तो पृथ्वी पर जाते हैं, सब जगह आप प्रचार करते हैं, सबको भक्त बनाते हैं, तो आप क्या करो, मेरे भाई को भक्त बनाओ आप, मेरा भाई है, बहुत दुष्ट व्यक्ति है, बहुत पापी व्यक्ति है, तो उसको भक्त बनाओ। तो नारद मुनि वहां पर गए वो पापी राज को प्रचार करने के लिए, साधु संघ की महिमा का बताने के लिए, जिसे उन्होंने पहले ये तीन व्यक्ति का उन्होंने उद्धार किया था। तो वहां पर गए तो पापी राज तो व्यक्ति था, नशा में धुन था, वो इतना पाप कार्य कर रहा था, एक भी पाप कार्य उसने नहीं छोड़ा नहीं था। तो ऐसे नारद मुनि उनके द्वार पर जाते हैं, वो महल में पाप कार्य कर रहा था, नारद मुनि बताते उनको कि तुम साधु संघ सर्वशास्त्र के लोग मात्र साधु संघ श्री इस श्लोक बोलते हैं। तो वो पापी राज आकर नारद मुनि को पीछे दौड़ते रहता है मारने के लिए, नारद मुनि कैसे तो जान बचाकर भागते हैं। और इसी तरह से ये पापी राज ने इतना ही सुना था कि साधु संघ सर्वशास्त्र के लोग मात्र संघ, लेकिन नारद मुनि जैसे ही भाग रहे थे तो नारद मुनि ने पूछा कि ठीक है भाई तुम भक्ति मत करो, लेकिन जब भी तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा तो यमराज को आप ये श्लोक का अर्थ पूछना कि जिसने भी लव मात्र साधु संघ प्राप्त किया है जीवन में उसकी गति क्या होगी, उसको क्या प्राप्त होगा उसको, तो ये प्रश्न पूछना। नारद मुनि ने उनको कहा, जाते जाते बताया कि तुम ये यमराज को पूछ लेना। तो जैसे ही पापी राज का मृत्यु हो गया, बहुत पाप किया था, तो वो अवश्य नरक जाने के लिए तैयार था। वो यमराज उनको इंटरव्यू लेने लगे वहां पर कि कहां पर आपको जाना है, इतना आपने पाप किया है। लेकिन ये पापीराज ने जीवन में बहुत पाप कार्य किया था, लेकिन सबसे अच्छा कार्य क्या किया था, वो ये श्लोक उन्होंने याद रखा था, साधु संग सर्वशास्त्र के, ये बहुत अच्छा कार्य किया था उन्होंने, याद रखा था। और यमराज को प्रश्न पूछने लगा वो कि ये श्लोक का मुझे अर्थ पहले बताइए और तभी मैं जाकर आगे आपका जो है जो भी आप बताएंगे मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं भोगने के लिए। तो यमराज बोलने लगे ये श्लोक का अर्थ तो मुझे भी पता नहीं है, एक लव मात्र साधु संग होता है तो व्यक्ति की गति क्या हो जाती है। तो यमराज बोलने लगे आप ऐसे मुझे पता नहीं है। तो शिवजी के पास जाते हैं, शिवजी बोलते हैं मुझे भी पता नहीं है। फिर यम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ऐसा लत सब करके अंत में विष्णु के पास आ जाते हैं वैकुंठ धाम में। और विष्णु के पास आने के बाद ये सब लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति का प्रश्न है कि लव मात्र साधु संग होने से उसको क्या गति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं आप सभी जो यमराज है, शिवजी है, ब्रह्मा जी, आप सब अपने अपने धाम चले जाइए और ये इस पापीराज को यहां पर ही रखिए। तो ये सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति ने जीवन में इतना पाप कार्य किया, लेकिन भगवान बोले कि इसको यहां पर ही रहने दीजिए। यद गतवानि वर्तन्ते तद्धाम परम पम। तो भगवान बोलते हैं भगवद्गीता में जो भी कोई मेरे धाम में आ जाता है तो वो वापिस नहीं आता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में वापिस घूमना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकालना, और इसीलिए हमको साधु का संग करना है और जो साधु बोलते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना है और उनके भगवान का नाम समर्पण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह से ये श्लोक बताता है कि किस तरह से हमको भगवान की भक्ति करना है, और भगवान की भक्ति सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। और बहुत बार अंत में आता है कि बहुत बार लोग भगवान के ब्रह्म निराकार ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करते रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर तात्पर्य बताते हैं कि हम भगवान के अनेक जो निर्विशेष रूप के ऊपर निराकार रूप के ऊपर ध्यान करेंगे, कितने भी जीवन में प्रगति करेंगे, लेकिन अंत में क्या होगा, उसका पतन निश्चित है। इसीलिए हमको भगवान का जो है सच्चिदानंद रूप है उनको ऊपर ध्यान करना पड़ेगा, और भगवान का नाम लेंगे तो हम भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा इतना ये मेरा पहला ये था यहाँ पर व्यासपीठ पर बैठने का, केवल भक्तों की आज्ञा से मैं बोलने का प्रयास किया, कुछ अगर गलती हो तो समझे क्षमा कर दे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शील प्रभुपाद की ताय गौर परमानंदे।
वैकुंठ भी बेचिया।